SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
तो सबसे पहले तो डैनियल आपका SBS हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है.
Thank you so much for having me.
तो डैनियल, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप पहली बार मेलबर्न आ रहे हैं?
नहीं, ये मेरा आई थिंक फिफ्थ और सिक्स्थ टाइम. दिस इज माय सिक्स्थ टाइम हियर. मैं पहली बार 2016 में आया था काउंटी फेस्टिवल के लिए. पैंडेमिक के अलावा हर साल आना होता है यहाँ पे. तो
जी, तो डैनियल, आपने जैसे बताया कि आप काफी सालों से मेलबर्न आ रहे हैं, तो आपने भी इस कॉमेडी फेस्टिवल को कहीं ना कहीं ग्रो करते हुए देखा होगा. तो इस साल का आपका एक्सपीरियंस पिछले सालों से कैसा था, क्या अलग था?
तो ये साल मैंने ये नोटिस किया है कि पैंडेमिक के बाद जो रिकवरी चल रहा है लाइव आर्ट्स का, वो अब तक चल रहा है. तो ये सब तो ऑडियंस ओवरऑल फेस्टिवल के ओवरऑल थोड़ा कम लग रहा है मुझे. और मैंने सुना है कि इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं चल रहा है आजकल, तो लोग बाहर नहीं आ रहे हैं. तो मुझे लगा कि अगर इकोनॉमी अच्छा नहीं चल रहा है तो लोगों को हंसना चाहिए ना, तो बात तो आना ही चाहिए फिर शोज के लिए. पर मुझे लगता है कि एक दो साल और लगेगा टू गेट बैक ऑन ट्रैक, बट इट इज लुकिंग गुड.
राइट. एंड डैनियल, जस्ट टू नो यू अ बिट मोर, आई वुड लाइक टू आस्क कि आपका ये कॉमेडी का सफर शुरू कैसे हुआ था?
ये अभी 13 साल पहले शुरू हुआ था, जब मैं MBA कर रहा था. तभी कॉलेज में एक इवेंट था, एक ना कल्चरल इवेंट्स होते रहते हैं. तो मेरे दोस्त ने पूछा मुझे कि कुछ आपको कुछ नया ट्राई करना है, क्योंकि मैं आई थिंक सिंस आई वाज 6 इयर्स ओल्ड मैं हमेशा स्टेज पे रहा था. तो कुछ ना कुछ तो मैं करती कर करके आ चुका हूँ. तो मैंने सोचा कि स्टैंड अप ट्राई करते हैं.
जी.
तभी वो भी इट वॉज जस्ट फॉर फन, इट वॉज नॉट सीरियस. और मैंने ट्राई किया, अच्छा लगा, मजा आया. फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ MBA के बाद. वहां पे कॉमेडी सीन शुरू होने लगा था तभी. तो यूके से कॉमेडी स्टोर आया था मुंबई में, उन्होंने एक कॉमेडी क्लब बनाया वहां पे. तो फिर इससे मैंने ट्राई किया और ऐसे ही टाइमिंग अच्छा था तो मुझे पसंद आया. और मैंने थोड़ा कैलकुलेशंस किया कि अगर मैं ये रिस्क ले लूं अभी तो शायद यू नो इट कैन वर्क आउट फॉर मी. अगर नहीं चला तो ठीक है, डिग्री वगैरह सब है
जी.
तो नौकरी लगेगी. फिर थैंकफुली 13 इयर्स लेटर अभी तक नौकरी ढूंढने की नौबत नहीं आई है. तो मैं अभी सो फार सो गुड कह के चल रहा हूँ.
बिल्कुल डैनियल, जिस तरह की कॉमेडी आप करते हैं उसे डार्क ह्यूमर भी कहा जाता है. तो मैं चाहूंगी कि जिन लोगों को इस जॉनर ऑफ कॉमेडी के बारे में नहीं पता है, आप उन्हें बताएं कि ये असल में है क्या.
देखो, ये जो डार्क ह्यूमर का टैग जो लोगों ने मुझ पे लगाया, उन्होंने लगाया, मैंने नहीं लगाया. लेकिन अगर आप इफ यू आस्क मी, मुझे लगता है कि मेरा कॉमेडी ना एकदम रियल है. मतलब है कि जो जिंदगी में हमारे साथ जो सबके साथ हम सब जो एक्सपीरियंस करते हैं, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ. लेकिन शायद ये टैग मुझे मिला है क्योंकि शायद ज्यादा कॉमेडियंस इन चीजों के बारे में बात करना नहीं चाहते हैं. यू नो, कई लोगों को लगता है कि कॉमेडी बस एक एस्केपिस्ट आर्ट फॉर्म होना चाहिए कि मुझे सब कुछ भूलना है.
right.
आप मुझे हंसा लो, मुझे सब कुछ भूलना है. लेकिन एज एन आर्टिस्ट मैं दुनिया को यह कहना चाहता हूँ कि आपको जिंदगी भूलने की जरूरत नहीं है हंसने के लिए. आप हमारी जिंदगी में हमारे साथ हर दिन जो कुछ भी हो रहा है उसमें भी कॉमेडी है. तो ऐसा है कि मुझे अकॉर्डिंग टू मी आई फील कि आई टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर वेरी रियल, समथिंग दैट यू नो जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं. और अगर जो कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंसेस है उसमें भी अगर हंसी मिल जाए तो आई फील लाइक लाइफ इज इजियर टू लिव.
राइट. डैनियल, अभी आपने कहा कि जिन मुद्दों पर, जिन विषयों पर आप बात करते हैं, ज्यादातर कमेडियंस उनको टच नहीं करना चाहते हैं. तो इस पर मैं बात करूंगी इस विषय पर कि अभी जिस तरह के पॉलिटिकल चेंजेस, राजनीतिक परिवर्तन हम भारत में देख रहे हैं, फ्री स्पीच का जो मुद्दा है वो काफ़ी एविडेंटली सामने आया है. तो मैं जानना चाहूँगी कि जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स होते हैं या ऐसा कोई भी इंसान जो कि इस तरह के किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है जहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में सरकार की आलोचना हो रही है या सवाल उठाया जा रहा है, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी आज के समय में भारत में असल में कितनी है ऐसे आर्टिस्ट के लिए?
सो जब फ्री स्पीच की बात होती है, द मेन विक्टिम्स ऑफ द लैक ऑफ फ्री स्पीच और जर्नलिस्ट है, यू नो, बिकॉज उनका रीच सबसे ज्यादा है. सो यू नो, प्रिंट मीडिया, न्यूज मीडिया, उनका रीच सबसे ज्यादा है
जी.
तो उनके फ्री स्पीच में बहुत सारे इश्यूज है. एज एन आर्टिस्ट मेरा रीच पर्सनली इतना नहीं है जितना जर्नलिस्ट का है. सो I get to get away with saying certain things that maybe a journalist could not say. So it isn't as complicated as it may appear. अगर मुझे कुछ कहना है, अगर और मैं directly बोल नहीं सकता हूँ, तो हम indirectly भी बोल सकते हैं.
जी.
So you know, अगर आप अभी के comedians के work देखेंगे, तो आपको you know, you'll see quite a few videos where हम लोग कुछ डायरेक्टली नहीं बोल रहे, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन हम जोक्स इस तरह में लिख रहे हैं कि जो सुनेगा वो जोक उनको समझ में आएगा कि किसके बारे में बात कर रहा है.
जी.
और उसमें भी थोड़ी हंसी है. सो एज आर्ट इवॉल्व्स, यू नो, कि ये हमेशा लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं ये ऑफेंसिव है, वो ऑफेंसिव है. तो एज एन आर्टिस्ट हम लोग को नए नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं सेम चीज बोलने के लिए. उसमें भी एक चैलेंज है.
बिल्कुल. डैनियल, आपने काफ़ी सारे बाकी कमेडियंस के साथ भी ओवर द टाइम कोलैबोरेशंस की हैं और आपने काफ़ी कुछ उनसे सीखा भी होगा, तो इनमें से आपके फेवरेट कौन है?
मेरे फेवरेट कमेडियंस इंडिया में से तो कनन गिल है, उनमें उसका राइटिंग मुझे बहुत पसंद है. अजीम बनतवाला भी एक शानदार कमेडियन है, उनका राइटिंग बहुत अच्छा है. इनके अलावा और कौन है यार, एक दो इंडिया में से, हाँ ये दो मेरे फेवरेट्स है. गुरसिमरन खंबा भी. हाँ, गुरसिमरन खंबा भी.
जब आप अपने स्टैंड अप की जर्नी शुरू कर रहे थे, तो ऐसी कोई इंस्पिरेशन थी? कोई इंटरनेशनल कॉमिक भी हो सकता है?
इंटरनेशनल कॉमिक तो है रसल पीटर्स, सारे इंडियन कॉमेडियंस के लिए तो वही यू नो सबसे ज्यादा माना जाता है, क्योंकि उन्होंने दरवाजा खोल दिया. हम लोग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम स्टैंड अप कॉमेडी एकदम अमेरिकन आर्ट फॉर्म था, यू नो, कि हम जैसे दिखने वाले लोग स्टेज पे नहीं चढ़ के हंसाते थे लोगों को. लेकिन जब रसल पीटर्स ने शुरू किया था, जब उसने 2005 में वो यूट्यूब पे बहुत पॉपुलर हुआ, 2008 में मैंने उसको मुंबई में देखा, तो ऐसा लगा कि बहुत अच्छा है कि हमारे जैसे कोई दिखने वाला भी स्टेज पे है. वो अगर रसल कर सकता है तो हम भी क्यों ना ट्राई करें. और इसी दौर हमने सब ट्राई किया 2009-2011 के बीच में, और फिर वहां से पूरा इंडस्ट्री शुरू हुआ. तो रसल पीटर्स, यस, डेफिनेटली अ बिग इंस्पिरेशन एंड यू नो मोटिवेशन टू ट्राई दिस.
तो डैनियल, जैसे आप जब इंडिया में अपने सेट्स लेके जाते हैं किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो वहाँ का क्राउड अलग होता होगा, बट व्हेन यू आर परफॉर्मिंग ओवरसीज, तो वो प्रोसेस कितना अलग होता है? आप अपनी राइटिंग में किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि ऑडियंसेस इंगेज्ड रहें बाहर की भी?
हाँ, तो इनिशियली जब मैंने मेरा करियर शुरू किया था, तभी मेरा कॉमेडी बहुत लोकल था. तो मतलब इंडिया, मुंबई में क्या हो रहा है, तो मुंबई के बारे में जोक्स. फिर जब मैं मुंबई से ट्रैवल करने शुरू, तो दिल्ली, बैंगलोर वगैरह सब यू नो ट्रैवल करना शुरू किया, तभी मुझे थोड़ा वाइडर लिखना पड़ा. तो फिर इंडिया में क्या हो रहा है, यू नो, तो अब इंडिया में अगर क्या हो रहा है उसके बारे में लिखूंगा, तो मैं दिल्ली में भी परफॉर्म कर सकता हूँ, मुंबई में भी और बैंगलोर में भी. फिर जब इंटरनेशनल करियर शुरू हुआ, तो अभी मुझे थोड़ा और भी चेंज करना पड़ा कि दुनिया में क्या हो रहा है, ताकि और यूनिवर्सल हो जाए. एट द सेम टाइम ऑल्सो इंडिया के बारे में मैं क्या बता सकता हूँ दुनिया को, बिकॉज इंटरनेशनल ऑडियंस को भी इंटरेस्ट है. जब हम स्टेज पे अनाउंस करते कि अगला कॉमेडियन इंडिया से आया है, तो उनको भी यू नो थोड़ा इंटरेस्ट है कि अच्छा इंडियन कॉमेडी में क्या होता है, What do they talk about? कि उनके experiences क्या है. और फिर perform करने के बाद उनको यकीन आता है कि हमारी life experiences बहुत similar है, even though we live in different countries.
जी, बिल्कुल. डैनियल, एक चीज पूछना चाहूंगी कि ये जो हंसाने की कला होती है, ये क्या एक इनबिल्ट चीज होती है कि जिसमें है उसमें है, या फिर ये एक तरह की स्किल है जो आप ओवर टाइम सीख सकते हैं?
इट इज अ लिटिल बिट ऑफ बोथ. मेरा ये मानना है कि थोड़ा अंदर से तो वो टैलेंट इनबॉर्न होना चाहिए
जी,
बट वो सिर्फ सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है, तो वो टैलेंट को होन करना पड़ेगा. यू नो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, एकदम गेट ऑन स्टेज एज ऑफन एज यू कैन, एंड ओवर टाइम यस आप नए स्किल्स भी सीख सकते हैं, हाउ टू राइट, हाउ टू परफॉर्म, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो इट इज अ लिटिल बिट ऑफ बोथ आई बिलीव. पर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर इनबॉर्न टैलेंट नहीं है तो कोई कॉमेडी ट्राई नहीं कर सकता है. एवरीबॉडी शुड ट्राई गेटिंग अप ऑन स्टेज. इट इज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस जस्ट टू यू नो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए. पब्लिक स्पीकिंग इज वेरी गुड फॉर योर ओन सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो अगर आपको करियर भी यू नो नहीं, इवन इफ यू डोंट वांट अ करियर इन स्टैंड अप, आप एक बार तो ट्राई कर सकते हो, उसमें क्या आता है.
डैनियल, मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न चल रहा है, इससे पहले भी खूब सारे इंडियन आर्टिस्ट यहाँ पर आए हैं और शो सारे हाउसफुल गए हैं. जाकिर खान ने अभी परफॉर्म किया था ओपेरा हाउस में. तो ये जो सब चीज़ें हैं, वुड इट बी राइट टू से कि ये दोनों कंट्रीज के बीच में जो कल्चरल गैप है एक तरह से ब्रिज कर रहा है.
बिल्कुल बिल्कुल. अगर अभी आप ये फेस्टिवल में भी देख रहे हो, मेलबर्न कॉमेडी फेस्टिवल भी, अभी दूसरे इंडियन कॉमेडियंस भी है, मैं देख रहा हूँ उनके शोज में, मेरे शोज में ऑडियंस मिक्स है. तो यस, हमारे देसी क्राउड सॉरी आते हैं, बट देर आर अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल ऑडियंसेस ऑल्सो, कि उनको भी देखना है कि इंडियन व्हाट इज इंडियन कॉमेडी ऑल अबाउट. तो अभी मेरे भी अभी तीन शो बाकी है. इन द लास्ट वीक we've had quite a few international audience members. I'm hoping ki agle teen last teen show maybe there'll be international audience and not just desi crowd, but a mixed audience. But that is the case, yes, there it is bridging the gap. Or hamare shows mein abhi it's not just Indians, so a lot of Australians and Europeans sab aate hain.
Ji,
so I'm hoping in the next 3 days I'll see more Indian faces also.
जी, तो डैनियल, SBS हिंदी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको आपके बचे हुए शोज के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट.
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच.
SBS न्यूज के लिए इस खबर को आप सबके सामने प्रस्तुत किया है भव्या पांडे ने.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.